ओम शांति। जब हम मधुन में आते हैं तो ये एक सुंदर सा संगम है कि न केवल हम सीनियर से मिलते हैं लेकिन हमारे जो सच में कर्म क्षेत्र पे जो कर्मयोगी होते हैं उनसे भी मिलने का अवसर मिलता है। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी और आदरणीय रामू भाई जी उपस्थित हैं, जिनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनके ज्ञान की यात्रा के विषय में पूछेंगे, उनके अनुभवों से कुछ प्रेरणा लेंगे, कुछ सीखेंगे। उससे पहले संजय भाई जी, आप रोटी डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, साथ साथ जो हमारा स्पार्क विंग है आप उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो हम पुनः एक बार आपसे निवेदन करेंगे, एक हाथ की ताली से हमारे दोनों भाइयों का स्वागत करें। और रामू भाई, किचन जो इतनी किचन डिपार्टमेंट है आप उसके इंचार्ज हैं, सूरज भाई जी के साथ आप सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़े ही सुचारू रूप से चलाते हैं, बड़ा ग्रुप है भाइयों का, तो हमने देखा है बड़ी मैच्योरिटी के साथ सबको साथ लेते हुए बाबा की सेवा को पूरा करते हैं। तो ऐसे दोनों भाइयों को आज हमें सुनने का अवसर मिलेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन संजय भाई जी से ही है, भाई जी आपकी ज्ञान की यात्रा कैसे आरंभ हुई, आपको बाबा का परिचय कैसे मिला, आप बाबा के ज्ञान में कैसे आए?
ओम शांति। मैं लगभग समझता हूँ सातवीं आठवीं में पढ़ता था, उस समय हमारे परिवार में ये ज्ञान आया। सबसे पहले हमारे माता पिता को ये ज्ञान मिला और उसके बाद परिवार के सभी लोग, मुझे छोड़ करके मेरे सारे भाई बहने ज्ञान में चले। मैं इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं बाहर हॉस्टल में पढ़ता था, लेकिन जब भी मैं घर में आता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में एकदम बदला हुआ माहौल, चारों तरफ बाबा के चित्र और एक हर एक के अंदर परिवर्तन। आयु छोटी थी इसलिए ये सब चीजें समझ में तो इतनी नहीं आती थी, लेकिन एक अनुभव, जो वातावरण का अनुभव है वो जरूर महसूस होता था। उसके लिए तो उम्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुझे लगता है मैं 11, 12 साल या 13 साल का उस समय रहा होगा। तो जब भी हम छुट्टियों में घर आते थे, माता पिता के साथ हम भी सेंटर पे जाते थे, घर के बिल्कुल पास में ही वो सेंटर था, तो हम माता पिता के साथ जाते थे। खास करके हम गुरुवार के दिन जरूर जाते थे। आप में से बहुतों को शायद ये अनुभव होगा जो मेरा अनुभव है, उस उम्र में ज्ञान की समझ होती नहीं है, योग की समझ होती नहीं है, लेकिन दो तीन बातें जो मुझे ज्ञान में खींचने के निमित्त बनी। सबसे पहली चीज जो थी वो था गुरुवार का भोग। उन दिनों 90 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय छोटा परिवार था बाबा का, तो हमारी जो बहनें होती थी उनको भी खिलाने पिलाने का शौक बहुत होता था, हमारी जो टीचर बहन थी उनको भी खिलाने का बहुत शौक था। गुरुवार के दिन थोड़े लोग होते थे तो हर गुरुवार को बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो बना करके खिलाती थी। खैर वो सब चीजें तो घर में भी बनती थी, हमारे घर में शुरू से ये प्रथा थी। हमारे माता जी का ये प्रयास रहता था कि हम बाजार का भोजन न खाएं, इसलिए सब कुछ वो घर पे ही बनाती थी। लेकिन जो आनंद, जो स्वाद सेंटर के भोजन में आता था वो घर के भोजन में नहीं आता था। हमने बहुत बार माता जी से ये बोलकर बनवाने की कोशिश की कि आप वही चीज बनाइए जो सेंटर पर बनता है, लेकिन कितना भी वो प्रयास करती थी वो जो टेस्ट है वो इसमें नहीं आता था। इवन जब वो लोग मधुबन आते थे और जब यहां से वापस जाते थे तो जो भी बचा हुआ खाना उनका होता था जर्नी फूड, जिसमें परोठे होते थे, पूरियां होती थी, मैं खास उनको बोलता था कि आप मधुबन जा रहे हैं तो तो मेरे लिए ज्यादा लेकर के आना। अभी वो दो दिन तो ट्रैवलिंग में लगता है, उस बीच में वो सब पूरी तरह सूख जाते थे, उसके बाद भी और एक हफ्ता मैं रख करके उसको खाता था। उसे डब्बे में एक रख के किचन में माताजी रख देती थी और मैं रोज उसे खाता रहता था। एक अजीब सा टेस्ट जो लौकिक दुनिया के पदार्थों में वो न मिलता हो, ऐसा मुझे उसमें स्वाद मिलता था। दूसरी चीज, जब भी रेड लाइट होता था, सब लोग योग में बैठते थे, तो वो चीज मुझे बहुत आकर्षित करता था। डेफिनेटली जब ज्ञान की समझ नहीं है तो योग की समझ नहीं होगी, लेकिन जब सब योग में बैठते थे तो मुझे अमूमन बहुत अट्रैक्शन होता था। मैं भी जा करके बैठ जाता था, क्या करना कैसे करना कुछ पता नहीं, लेकिन बैठने से भी मुझे बहुत सुकून मिलता था। और तीसरी बात, जो बहनों का एक निस्वार्थ प्रेम था, वो चीज। ज्ञान तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया, मैं कह सकता हूं कि मधुबन आने के बाद ज्ञान मुझे समझ में आया, उससे पहले ज्ञान की समझ मेरे पास नहीं थी। योग के प्रति रुचि जरूर थी, लेकिन वो जो बहनों का निस्वार्थ प्यार है, बहुत ही हक से थैला पकड़ा देती थी, जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ ये लेकर के आओ, गैस सिलेंडर लेकर के आओ, ये मतलब अजीब एक ऐसा लगता था कि घर में ये प्यार तो केवल माता पिता ही कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सब चीजें जो है वो निमित्त बनी बाबा के घर के नजदीक आने की। फिर धीरे धीरे 90 में एक बड़ा प्रोग्राम था, हमारी बड़ी बहन जी आई हुई थी। बिहार में सिंदरी एक जगह है, वहां पर वहां से हम लोग का सेवा केंद्र कनेक्टेड था और वहां की जो बहन जी थी मम्मा बाबा की पालना ली हुई थी। और चूंकि सेंटर छोटा था, रहने का स्थान नहीं था, तो जो भी आता था हमारे लौकिक घर में ही ठहरता था। तो बीच में जब भी समय होता था वो बहन जी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी, मम्मा बाबा की, अपने जीवन के अनुभव की, ज्ञानियों की, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। और वो सुन करके बहुत अच्छा लगता था। हम लोग रात को 10, 11, 11:30 बजे तक बैठे रहते थे। घर में अभी भी एक बाबा का कमरा है जिसमें एकदम सेंटर के स्टाइल में ही संदली वंदली सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि अक्सर भाई बहनों का आना जाना लगा ही रहता है। तो बहन जी उस क्लासरूम में बैठ करके और काफी बातें सुनाती थी। फिर फाइनली 90 में, आई थिंक 11वीं या 12वीं में पढ़ता था, तो मैंने निश्चय किया कि बस अभी मुझे यही जीवन जीना है, मुझे लौकिक जीवन नहीं जीना है। अगर बाबा ने मुझे कुमार जीवन में पकड़ा है तो निश्चित रूप से बाबा मुझसे कुछ सेवा लेना चाहता है। फिर इस तरह से मधुबन में हम आए। यहाँ जब आए तो मैं राजस्थान में ही पहली बार आया था, कभी उसके पहले आया नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ उतरा, मुझे लगा कि शायद मैं पहले 1000 बार यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ का सब कुछ मेरा देखा हुआ है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उस समय माता पिता आए हुए थे और मैंने उनसे ये हाँ करवा लिया कि आज के बाद मैं यहीं रहूँगा, मुझे वापस घर नहीं जाना है। खैर, माता पिता ने तो छुट्टी उसी समय दे दी, पर उस समय एकदम से तो रुकना संभव था नहीं, केवल पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर आदि ये सब तो बाद में बने हैं। तो एक बार हम फिर वापस गए, थोड़े समय के बाद फिर सेवा में आए, फिर यहाँ ही रह गए।
आपको वापस जाने का संकल्प नहीं आया, क्योंकि आप पढ़ाई ग्रेजुएट, ज्ञान सरोवर की एक विशेषता है, यहाँ पे जो निवासी हैं मोस्टली सब बहुत प्राइम एज में आए, किसी ने ग्रेजुएशन पूरा किया, किसी का अंडर ग्रेजुएशन था। तो जब ये बन रहा था तो 20-22 साल, अगर एवरेज एज लेंगे तो 20-22 साल की एवरेज एज थी। और यहाँ के भाई भी ऐसे ही हैं, मतलब कईयों की पढ़ाई पूरी हुई और मधुबन आ गए। तो भाई जी, आप भी ऐसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो ऐसे वापस जाने का आपको संकल्प नहीं है?
नहीं, वापस जाने का तो मेरे लिए वापस जाना यहाँ से कष्टप्रद है, आना खुशी की बात है, जाने के लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जहां तक ग्रेजुएशन की बात है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ रहते पूरा किया। जब मैं यहाँ आ गया तब तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैं था कुछ, पर आने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर हमारी जो जोन इंचार्ज बहन थी, और थोड़ा सा घर वालों का भी था कि आपने शुरू किया है तो ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए, तो एग्जाम से 2 महीना पहले मैं यहाँ जाता था सूरज भाई जी से छुट्टी लेकर के, दादियों से छुट्टी लेकर के 2 महीना पहले किताबें खरीदता था, पढ़ता था, और पढ़ने के बाद फिर हम एग्जाम देते थे। और एक बाबा की मदद, कि बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मेरे पर समर्पित होते हैं मैं उन पर समर्पित हो जाता हूँ। मैंने ये देखा कि 2-2.5 महीने की पढ़ाई से भी मैंने हर साल टॉप किया। एक साल इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, एक साल ज्योग्राफी में, और एक साल फिलॉसफी में। हर साल मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया।
बहुत सुंदर भाई जी, सच में ये कमाल है। हाँ, मैं भी जब यहाँ पे आया तो मैंने ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमबीए सब मधुबन से किया। तो ये ज्ञान सरोवर निवासी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और उनकी कलाएं बाबा ने जैसे बाद में मदद से बहुत निखरी हैं। रामू भाई जी, आप भी मतलब जैसे ही बचपन से ही लगभग ज्ञान में आप, हाँ, आपकी आपको बाबा कैसे मिला और आपकी बाबा की ज्ञान की यात्रा कैसे आरंभ हुई?
मैं तो कहता हूँ बाबा और ड्रामा बहुत वंडरफुल है। हम लौकिक में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में आते थे धनवान में, धनवान लोगों में बहुत धनवान थे लौकिक परिवार। तो कंबाइंड फैमिली थी, हमारे पिताजी के 4 भाई थे।
राम भैया तो, अभी भी धनवान हो आप?
नहीं, वो तो है, अलग बात है, लौकिक के हिसाब से था उस समय। तो क्या हुआ, सेकंड नंबर वाला जो है ना, उनके हाथ में सारा कारोबार होता था। धन क्या करता है, माया बन जाती ना अज्ञान में, तो गंदी आदत है उनके पास आए थे, इसके कारण पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया था। इतना कोलैप्स आ गया था, रोड पर आ गए थे सब लोग। तो हमारे ग्रैंडफादर ने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया फटाफट, ताकि सब लोग को नुकसान ना हो। हमारे पिताजी भी छोटे थे, हम भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, 10 साल का था मैं उम्र का। तो क्या किया, पिताजी को बिजनेस करना नहीं आया, पूरा लॉस हो गया। मैं लौकिक में डेली 10 रुपए लेता था घर से, हमारे स्कूल में बच्चों को खिलाता था। सवेरे सवेरे 7:30 बजे खुलता था स्कूल, तो मैं 30-40 लोगों को रोज खिलाता था उस पैसे से। ऐसा व्यक्ति, घर में खाना नहीं है, ये हालत में आ गए थे हम लोग। लेकिन माताजी बोलती थी किसी को नहीं बताना मैंने नहीं खाना खाया आज। तो सारा सोना चांदी सब बेच के उन्होंने छोटा सा दुकान खोला मोहल्ले में। बहुत लोग रहम करते थे हम पर। तो क्या हुआ, उसी समय शिव का मंदिर में चित्र प्रदर्शन चलता था। पिताजी बहुत दुखी थे, माताजी भी बहुत दुखी थे। मैं ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखा था, रोज रोते थे। ऐसा दिन नहीं था उन लोगों को आंखों में आंसू नहीं दिखा हो। हम 3 बच्चे थे, 2 भाई हम एक बहन थे। उसी समय बहन जी ने बहुत प्यार से उनको बुलाया पिताजी को, भैया इधर आओ, अन्याय इधर आओ बोला, माना अन्याय बोलते तेलुगु में। तो गया, उनको लौकिक में बहन नहीं है, चार 5 भाई है। तो उनको जैसे ही बहन बोला ना, तो उनको प्रसाद दे दिया। देने के बाद वो सुना सारा चित्र प्रदर्शन, सुन के आया घर में। माताजी को कहा कि वो एक संस्था आई है नया नया, आप भी जाना। फिर माताजी के साथ मैं गया था सेंटर में, तो घर में बहुत दुख। नया नया सेंटर था उस समय, उसी समय खोला था उन्होंने। उस समय 5-6 स्टूडेंट्स थे सिर्फ, सब मिडिल क्लास पीपल थे। तो क्या हुआ, सेंटर में मेरा नेचर था कि अंदर जाके देखने का था। तो मैं छोटा बच्चा था, बहन, 2 बहनें थे। तो एक बहन कभी कभी बाहर रहती थी ना, तो माताजी को बोलती थी हमारे बहन जी कुछ दिनों के बाद कि आपका बच्चे है ना, तो हम सेंटर में भेज दो, सेंटर नजदीक था तो हमारे पास रहेंगे रात को। तो फिर माताजी बोलती थी स्कूल पूरा होने के बाद आप सेंटर में जाना। मैं स्कूल से डायरेक्ट सेंटर में जाता था, होमवर्क भी वहीं करता था, वहीं सो जाता था, वहीं नाश्ता करता था। लेकिन सेंटर में कुछ भी नहीं था, नए नए सेंटर है ना, तो चारों तरफ से थोड़ा सा मट्टी होती थी सेंटर के आसपास में। तो उसमें आंगन में उसमें पालक, लौकी ऐसे डालते थे बहने, उसी को काटते थे, थोड़ा दाल मिला के चावल के साथ खाते थे। देखो बहने कितना मेहनत करती है एक सेंटर खोलने के लिए, तो मैं माता जी को कहता था, माता जी हमसे भी बहुत गरीब लोग हैं ये लोग, उनका डब्बे सारा खाली, तो हमारा किराना छाप था। फिर माता जी कहती थी, ऐसा क्यों बोलते हो? बोलता मैं देखता हूं ना, एक भी डब्बा खाली, हमारे पास तो 100-100 ग्राम तो दाल होता था, तो कम से कम उनके पास तो वो भी नहीं है, तो ऐसा बोल रहा था। तो क्या हुआ माता जी, एक बार मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, बाबा ने कैसे हमको आगे बढ़ाया। बहनों का बहुत प्यार मिलता था, मैं होमवर्क वहीं करता था, बहनें कभी ये नहीं करती थी हमारे पास खाना नहीं है, दोनों बच्चे हम कुछ ना कुछ खिलाते थे, वो लोग कहाँ से आता था पता नहीं, लेकिन सब डब्बे खा ली डेली, ऐसा था। तो एक बार क्या हुआ, नारियल का डब्बा पैराशूट का आता था 200 ग्राम का, 200 ml का, तो उसमें पूरा उन्होंने अपना ये होता ना बाल डाल के घुमा रहे थे। मैं बोले बहन जी क्या हुआ, तो बोलते है कुछ नहीं है, नारियल तेल लगा रहे हम लोग। फिर मैं माता जी को आके बोल दिया, माता जी भी घर में मैं गया था तो वो भी नारियल तेल लगा रही थी सिर पर। तो मैंने पूछा, माता जी ऐसा है ना, वो उनके पास नारियल तेल बिल्कुल नहीं है, ऐसे डब्बे में घुमा के खा ऐसे लगा रहे हैं, ऐसा बोला। तो फिर माता जी ने कहा, ये लेके जाओ वहां दे दो बहनों को। वो डब्बा ले आके, आधा से ज्यादा था डब्बा, छोटा डब्बा था वो भी, मैं ले जाके सेंटर में दे दिया बहनों को, मम्मी ने भेजा। फिर बहने बहुत खुश हो गया, थैंक्स भैया, ऐसा बोला। वंडरफुल बात देखो, शाम को हमारे ग्रैंड मदर हमारे घर में आई थी, उन्होंने 2 लीटर का नारियल तेल लेके आया। हमने बाबा घर में क्या किया, 100 ml का नारियल तेल दिया, हमारे घर में 2 लीटर आ गया, एकदम मैं स्टन हो गया। माता जी बोलती, देखो भगवान के घर में देने से हमको कितना आया, फिर इसमें से आधा निकाल के दे दो। और किराना शॉप का जितने भी सामान थे, हम खाते थे ना सेंटर में, तो माता जी हम भी बहुत गरीब थे रियलिटी में, 500 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा चावल दाल बेचते थे सेंटर के लिए, तो हम ले जाते थे। कोई सब्जी ले आता था, 5 स्टूडेंट थे वो, तो कोई सब्जी ले आता था, कोई दाल ले आता था, कोई चावल ले आता था, हम किराना शॉप ले। जैसे जैसे हम बाबा घर में सेवा करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस बढ़ता गया। ऐसा बड़ा हमको कॉन्शियस में ही नहीं आया कैसे कैसे गया वो, फिर वापस एक बहुत अच्छी लेवल में आ गया। मैं तो इसलिए कहता हूं, कोई भी भाई बहन यथाशक्ति अपना तन मन धन बाबा के यज्ञ में यूज करते रहो ना, हमारे आज हमारे खानदान में एक टॉप लेवल में रहते हैं हमारे परिवार धन के मामले में। अभी मैं कॉल करूंगा भैया को, भाई मुझे 5 लाख चाहिए, ऑन द स्पॉट में 10 मिनट के अंदर आ जाएगा अकाउंट में, इतना अच्छा पोजीशन में आ गया। कौन लाया ये सब? बाबा लाता है। हम जैसे जैसे यूज करता गया धन बढ़ता गया। वंडरफुल बात है, मैं बच्चा था, 12 साल का था उस समय जब सेंटर में जाता था, होमवर्क वहीं करता था, वहीं रेस्ट करता था। मुझे 7 डेज कोर्स बहनों ने दिया था, मुझे बाबा का प्यार भी बहुत मिला। फिर उसके बाद में वहां सेंटर बहुत बढ़ता गया, 70 फैमिली आते थे। 70 फैमिली में क्या होता था, एक साल के अंदर ऐसा हो गया था, जगह ही नहीं थी बैठने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, भाइयों का अलग क्लास कराया, माताओं का अलग क्लास 10 बजे, फिर शाम को बच्चों का क्लास करते थे। बच्चे कम नहीं थे, 50 बच्चे थे उनके, और सारे बच्चों का क्लास अलग होता था, तो हमें सिखाया जाता था। 6ठी क्लास में था मैं, वो चित्रप्रदर्शन पकड़ के ले जाते थे, मंदिरों में लगाते थे, और सब भाई बिजनेसमैन होते, बिजनेस में बहुत बिजी रहते, माताएं भी नहीं आ पाती थी सेवा में। सैटरडे संडे कभी भी होता था ना, बहनें बोलती थी वैसा बच्चे चलो बाबा की सेवा करना है, वो सब चित्र प्रदर्शन लटकाते थे, हम ही चित्र प्रदर्शन समझाते थे, आत्माओं परमात्मा का ज्ञान, 3 लोक का ज्ञान ऐसा समझाते थे। और आने के बाद डिस्कस करते थे सेंटर में कि एक भाई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर कैसा देना है। कई बार कंफ्यूज हो जाता ना, सामने वाले क्वेश्चन पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, फिर एक बहन रहती थी वो समझाती थी, फिर उसको डिस्कस करते थे हम बच्चे। उसके बाद में सबको टोली मिलता था, तो हमारी पालना ऐसा होता रहा। होते होते हमको पता ही नहीं चला हम बाबा के कब बन गए, बाबा के प्रति बहुत प्यार बहुत स्नेह। फिर वही पोजीशन में मैं आया था, मैं 8वीं कक्षा में था, मैं एक शब्द बोला था, कौन कौन खाना ने नाश्ता करके नहीं आया। मैं फिर वही 10 रुपये मेरे पिताजी ने दिया था कि बेटे अभी हम लोग अच्छा पोजीशन में है, फिर आप खिलाते रहो जिसको भी चाहिए गरीबों को, ऐसा सिचुएशन आया था हमारे पास।
बहुत सुंदर। फिर राव भी आपको सरेंडर होने का आपको कैसे ख्याल आया, आप मधुबन में कैसे आए? और ये
जब मैं मधुबन में आया था, सेवा में आया था, सरेंडर होने की लक्ष्य से नहीं आया था मैं, उससे मैं डिग्री फाइनल ईयर कर रहा था, थर्ड ईयर, 15-20 दिन के लिए आया था मैं सेवा में। उस समय बहुत सेवा होती थी मधुबन में, अकेला पांडव भवन था। तो एक बार आतम भाई ने हमारे किरीट भाई से, कुछ किरीट भाई है ना, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में वहां सेवा करता था। तो क्या हुआ, उसने एक बात कहा, एक खटिया थी, 100 खटिया तक था लगभग, उसको घीस के पेंट करना था। हमको पता नहीं थे, हम दो भाई थे सेवा में आए थे। तो उन्होंने बोला ये टटियों को घिसना है, प्राइमरी मारना है, पेंट करना है। तो हमने क्या किया, सवेरे 8 बजे बोल दिया, हमको पता ही नहीं था, खाना भी नहीं खाया, लगे रहे रात को 8 बजे तक। किसी ने बोला भाई तुम्हारे लड़के तो लगे हुए सवेरे से। तो आके देखा भाई तुम 40 कटिया तो एक ही दिन में कर दिया, मैं तो 10 दिन का काम था ये। तो खाना खाया, बोला नहीं खाया, बोला जाओ तुम लोग रूम में जाके नाश्ता करो, भोजन करो, ऐसा करके बोला। हमको पता नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इतना ही करना। तो हम दोनों भाई मिलकर 40 कर दिया एक ही दिन में। तो क्या हुआ, आत्म प्रकाश भाई ने किरीट भाई के क्वेश्चन पूछा था, भाई मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको बाबा के प्रति लगन हो, सेवा बहुत हो, सेवा बहुत कर सकता है। तो किरीट भाई ने कहा भाई वो साउथ इंडियन है, हैदराबाद वाला है, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आता, बहुत कम आता, इंग्लिश तो समझ जाता है। तो बोला कि कहाँ सेवा करना है, भाई बोली दादी किचन में। उस समय बोली दादी थी, वो किचन कितना छोटा सा किचन, मैंने मुझे लेके आया वहां, लेके आके कैन यू डू सेवा हियर, बोला आत्म प्रकाश मैंने, आप यहाँ सेवा कर सकते हो। हाँ आराम से, ये क्या है, कोई सेवा है क्या यहाँ, ऐसा पूछा था, मुझे पता नहीं था सेवा क्या होती है। तो हाँ बोला, मैं 2 दिन के बाद गया, अंदर जाने के बाद सेवा का ड्यूटी देखेंगे तो हैरान हो जाओगे आप। एक बोली दादी थी, उस समय बहुत प्यार करती थी दादियों की, ये विशेषता मैं आपको बताता हूं, कितनी महानता होती दादियों की। मैं वहां सेवा करता था, सवेरे 3:30 बजे चालू होता था सेवा, रात को 10 बज जाता था, और बीच में एक एक घंटा, दो दो घंटा रेस्ट, मैंने एक घंटा, मैंने एक घंटा ही जा सकता है, मुरली के बाद तुरंत आना, मैंने नाश्ता करके इतना टाइम पे आना, इतना टाइम पे, एक बज जाके 3 बजे आना, मैंने 3 बजे आना ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। वहां दादी के पास सामने इतनी सारी बातें होती थी, टीचर बेने आते थे, उनके भोजन बनवाना, पेशेंट के खाना बनवाना, सारा साफ सफाई करना, बर्तन सारा धुलाई में डलवाना, फिर बर्तन सारा ले आना वापस, फिर मधुबन वाले बनाते थे वहां, वो सारा काम होता था, ऐसा सेवा होती थी। लेकिन टाइमिंग्स फिक्स्ड था हमारे पास, तो दादी का बहुत पालना मिला मुझे। तो क्या हुआ, हमारे एक सेवा मिली थी मुझे, मेरी सेवा ये थी, पहले सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में जाके सारा लिस्ट लेना है, लेके फिर सभी दादियों के पास जाता था लिस्ट लेके, कि दादी जी, गुलजार दादी जी थी उस समय, शांतमन दादी जी थी, सभी दादियां, रतमन दादी जी, एक बड़ी दादी का अलग किचन था, सभी दादियों के एक ही भोजन बनता था बोली दादी किचन में। मैं सभी दादियों के पास जाके पूछता था, दादी जी ये सब्जियां हैं, आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, जो जनरली कॉमनली होता था, एक सब्जी बनाते थे हम लोग, वो लिस्ट ले आके रखता था डेली, हमारा ड्यूटी थी सारा सब्जी ले आना, कटवाना, धुलाई करना, सफाई करना, दे देना, ऐसा था। तो जर्नी फूड भी बनाना था, दादियों का प्यार कैसा मिला देखो। मैं एक सुंदर अनुभव बताता हूँ दादियों की महानता की। एक बार अनाउंसमेंट हुआ था बाबा के बाद दादी जी वापस दिल्ली जाएगी, गुलजार दादी जी, तो सभी लोग लाइन में लगे थे टोली लेने, सभी माताएं सेवादारी सब, तो मैं नहीं था वहां, क्यों, क्योंकि मुझे जर्नी फूड बनाना था दादी जी के लिए। तो फटाफट किचन में आया मुरली के बाद, तो सेवा कर रहा था, तो हमारा सतीश भाई, सुरेंद्र भाई ने कहा कि भाई जाके सब्जी डिपार्टमेंट में सब्जी ले आओ, ये सब्जी। तो फिर मैं गया था, तब दादी जी आई थी किचन में, तो सबको गुड मॉर्निंग किया, सबको टोली दिया, बोला वो छोटू कहाँ है। तो हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा दादी जी वो नीचे गया है सब्जी में लाने, अच्छा ठीक है करके दादी सिगड़ी पर हाथ सेक रही थी। 10 मिनट के बाद मैं ऊपर आया सब्जी लेके, तो सुरेंद्र भाई ने कहा भाई दादी जी आपको याद कर रही है। तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी ओम शांति, कुछ सेवा था? तो दादी जी ने कहा टोली बांट रही थी ना, आप दिखाई नहीं दिया, सब टोली ले रहे थे, आपने नहीं लिया, तब समझ लिया मैंने कि आप सेवा में थे, मैं आपको गुड मॉर्निंग करने आई थी लेकिन दिखाई नहीं दिया, इसलिए 10 मिनट वेट कर रही हूं, आपको गुड मॉर्निंग करके जाऊं। आप सोच सकते हो दादियों की महानता, दादी जी कहाँ है, भगवान का रथ, और मैं कहाँ बच्चा। फिर दादी ने एक टोले का बॉक्स दिया हाथ में, फिर जर्नी फूड तो हम उनका ब्राह्मणियों को देते थे, नीलू बहन वगैरह आती थी, फिर दादी चली गई थी। फिर बोली दादी ने कुछ दिनों के बाद कहा सूरज भाई को, भाई मुझे ये बच्चा मधुबन में समर्पित चाहिए। फिर दादी जी को बोला, दादी प्रकाशमयी थी, कि ये बच्चा मुझे समर्पित लिस्ट में चाहिए यहाँ। फिर बोला, दादी ने बोला कि जगह कहाँ है, तो बोलते जगह मैं क्रिएट करूंगी, मुझे मैं अपने पास रखूंगी। लेकिन सूरज भाई को बहुत दुष्टि थी, कारण यह था सूरज भाई भी बहुत खुश होते थे, 3:30 बजे हमारा सेवा चालू होती थी, लेकिन सोते थे कब, 10:30 बजे सोते थे हम लोग। तो मैंने सोचा रोज मुरली, रोज अमृत वाला मिस हो रहा है 3:30 बजे मेरा, तो मैं क्या करता था, 2 बजे उठता था, 11 बजे सोता था 10:30 बजे, 2 बजे उठता था, फिर आता था 3:30 तक सेवा करता था, फिर अमृत वाले जाता था। उस समय सूरज भाई भी योग कराते थे, भाई जी को बहुत दृष्टि होती थी, 3:30 बजे इधर आ गया, फिर वहां सेवा कौन कर रहा है। फिर कभी कभी भाई जी 2 बजे उठते थे, आते थे, तब भाई जी ने देखा, बोली दादी भी देखती थी, फिर उसी समय मुझे समर्पित लिस्ट में बोलने के लिए उन्होंने बता दिया। लेकिन मेरे को 3rd ईयर फाइनल ईयर करना था, फिर यहां बैठ के मैं सारा एग्जाम लिखा, यहाँ पढ़ाई किया, फिर वहां जाके एग्जाम लिख के फिर मैं यहाँ आया था। फिर उस समय से फिर मैं ज्ञानसुर में, जब बना था ज्ञानसुर में मुझे शिफ्ट किया सूरज भाई ने सेवा में। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत सुंदर, ये तो सच में कमाल है कि जो यहाँ पे छोटी उम्र में समर्पित हुए और यहाँ पे रह गए हैं, जो भी भाई बहन है, चाहे भाई हो या बहन है, उसमें दादियों की पालना का बहुत बड़ा रोल है। मुझे याद आता है, मैं 16 साल का था जब मधुबन में था, तो बड़ी दादी जो थी वो रात को चक्कर लगाते थे और मैं टेलीफोन एक्सचेंज में सेवा करता था। आपको पता है यहाँ की ठंडियाँ कितनी ठंडी होती हैं, तो ऐसे ही एक बार दादी रात को भोजन के बाद चक्कर लगा के बाबा का कमरा, झोंपड़ी, फिर टोली किचन होते हुए टेलीफोन एक्सचेंज में उधर से गुजरते थे पांडवन में। तो उस समय पे टेलीफोन एक्सचेंज में बहुत भीड़ होती थी, लोग कॉल करते थे, क्वार्टर रेट होती थी, कम रेट लगता था। तो दीदी दादी जब जाती थी तो रोज देखती थी। तो एक दिन दादी ऐसे खड़े आए और मैं अंदर था, खड़े होते हैं जैसे दादी आती हैं, तो दादी ने बड़ी प्यार से दृष्टि दिया, यू नो आप सब को पता है दादी जब दृष्टि देती थी तो उनकी एक रूहानियत होती है, सर हिलाते थे प्यार से, मतलब जैसे उनकी दृष्टि बात कर रही हो। फिर उन्होंने प्यार से बुलाया और मेरे को पूछा, वो प्यार से मिश्नू बोलते थे क्योंकि छोटे थे, तो बोले तुम यहीं सोते हो? हाँ दादी। उनको पता था कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तुम यहाँ सोते हो, अच्छा कंबल है, गद्दा है, रात को नींद आ जाती है, यू नो। उस समय ये बात मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं अभी सोचता हूँ ना ये बातें कि दादियाँ कितनी महान है, उनकी महानता को हम शब्दों में नहीं बता सकते, हर एक के जीवन को बनाने में उनका हाथ है। जितने भी मधुबन निवासी, ये मेरी बात नहीं या रामू भैया की बात नहीं, हर एक जो भी उनके साथ रहे, उनकी उन्होंने जिन्होंने पालना लिया, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इतने पूरे विश्व की संस्था को चलाने वाली हेड, और एक 16 साल के भाई को पूछती है, बच्चे को पूछती है कि तुम ठीक हो, ऐसे तो ये उनकी महानता थी सच में दादियों की। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मधुबन निवासी हैं, जो सरेंडर होने का जिनको निश्चय हुआ, उसमें उनकी जो दादियों की पालना है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी से रिलेटेड मैं संजय भाई जी से क्वेश्चन पूछूंगा, भाई जी आपको भी दादियों के साथ बहुत अटूट, मतलब स्नेह तो हर एक के साथ था, तो आपके अनुभव क्या थे उनकी पालना का विशेष?
जी, जैसा कि आपने कहा, हर एक को दादियों का अनुभव है ही, चूंकि हम लोग जिस समय में आए, यज्ञ छोटा था, सेवाएं कम थी, दादियां बहुत थी, तो उनके साथ समय बिताने का हम सबको बहुत अवसर मिलता था। छोटे भी थे, बचपना भी थी, उसका भी लाभ मिलता था। मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक रामू भाई की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमारी दादियां तो महान है ही, हमारे रामू भाई भी कम महान नहीं है। इनकी एक मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोग बड़े गंभीर होके सुन रहे हैं, मुझे लगा कि थोड़ा आपको हंसना भी चाहिए। जैसा कि रामू भाई जी ने बताया कि शुरू में जब ये आए तो इनको हिंदी नहीं आती थी, और ये भोली दादी जी के पास सेवा करते थे। एक बार भोली दादी ने कहा, तब हमारे जो बड़े भंडारी इंचार्ज थे सूरज भाई जी के बाद, वो देव भाई थे, सीनियर भाई हमारे अभी भी हैं, इनको हिंदी आती नहीं थी, समझ में भी कम आती थी। भोली दादी ने एक बार इनको कहा, रामू किचन में जाओ, देव भाई से धनिया लेकर के आओ। ये किचन में गए, सब ढूंढा इधर उधर, कौन है देव भाई, इधर उधर नहीं मिले, वापस आ गए। दादी ने बोला क्या हुआ, बोला दादी नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला, जाओ ढूंढो। नहीं दादी नहीं मिला। तो बोला अरे पागल तुम जा देव से। दादी ना भोली दादी बहुत मतलब प्यार से कभी बुद्धू कहती थी, कभी ऐसा मतलब मुठ्ठा बोलती थी, कभी मिच्छन बहुत प्यारी थी। तो कुछ ऐसी बातें हुई, फिर कहते अरे पागल मेरा सिर क्यों कह रहा है, तू जा पागल देव से धनिया लेके आ। अब इनको ये भी समझ में नहीं आया, ये किचन में गए, उनको लगा कि वो भाई का नाम देव नहीं है, पागल देव है। वो कहते पागल देव कौन है। वो बोला भाई वो पागल देव किसी भाई ने सुना, उसको भी मस्ती सूझी, बोला वो पागल देव भाई खड़े हैं। बोला पागल देव दादी ने धनिया मंगाया है दे दो। वो समझ गए, बड़े भाई थे, समझ गए इस बात को कि इस भाई को हिंदी आती नहीं है, तो दादी के पास लेकर के आए ऐसे। तो बोला दादी ये मेरा नाम देव नहीं पागल देव बता रहे। तो दादी ने बोला मैंने इसको बोला पागल जा देव से धनिया ले आ, इसको समझ में आया। ये कहते दादी आपने बोला तो मेरे को लगा वो पागल देव भाई का नाम है। तो हमारे रामू भाई बहुत भोले हैं और बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सबके साथ मिलजुल करके चलना, आपकी बहुत अच्छी फितरत है। और दादी के संग का अनुभव सुनाया तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा है, जब हम थे शुरू शुरू में आए तो दो दादियों का प्यार हमें बहुत मिला, बेशक बड़ी दादी का प्यार तो हम सबको भी मिला है, लेकिन मैं बड़ी दादी के नज़दीक इतना कभी नहीं रहा, लेकिन चंदमणि दादी जी और मनोहर दादी जी के नज़दीक मैं बहुत रहा हूँ। चंदमणि दादी जी और मनोहर दादी से मैं इतना भी घुला मिल, इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि वो सोते रहते थे तो भी मैं उनके कमरे में चला जाता था, वो सोए हुए हैं मैं घूम फिर करके अपना काम करके आ भी जाता था। जैसा कि मैंने बताया हम लोग जब आए तो कोई 18 कोई 20 कोई 22 साल के थे, तो दादियों को भी बच्चे जैसी ही फीलिंग आती थी। मनोहर दादी जी और चंद्रमणि दादी जी, चंद्रमणि दादी जी का तो हम सबके ज्ञान योग की पालना में बहुत ज्यादा रोल है, और उतना ही मनोहर दादी जी का। मैं मनोहर दादी से रिलेटेड एक कहानी बताना चाहूंगा कि मनोहर दादी जी का कन्याओं के प्रति बहनों के प्रति बहुत ख्याल रहता था। उनको ये रहता था कि इनका जीवन बने, हर हाल में इनका जीवन बने। और हम जानते हैं कि जब हम ज्ञान में आते हैं सेंटर्स पे जाते हैं तो घर के माहौल से निकल करके एक नए वातावरण में जाते हैं, और नए वातावरण में एकदम से एडजस्ट हो पाना हर एक के लिए एकदम से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में हम बहुत लाड़ प्यार से पलते हैं, अपने ही कन्वीनियंस पे रहते हैं। तो कई बार कन्याएं एक जगह सेट नहीं होती थी, दूसरी जगह फिर भेजती थी, तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसी ऐसी कन्याएं भी थी जिनको 10-10 बार इधर उधर सेंटर्स पर भेजा और अल्टीमेटली उनका जीवन सफल हो गया। तो मनोहर दादी जी खास उनके अंडर में पंजाब और बहुत सारे स्टेट थे, उनके पास रोज पत्र बहुत आते थे, उन पत्रों को जवाब देना होता था। और उनको पता था कि संजय को हिंदी अच्छी आती है और ये लिखता भी अच्छा है। तो एक दिन मेरे को उन्होंने बुला करके पूछा कि संजय ऐसा है कि मेरे पास पत्र बहुत आते हैं और मुझे उसका जवाब देना होता है और मैं इतना लिख नहीं सकती और मैं इतना फास्ट भी नहीं लिख सकती, तो तुम मेरी मदद करोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं दादी, आपने कहा बाबा ने कहा, मैं कैसे ना कर सकता हूँ। मैं रोज एक डेढ़ घंटा दोपहर की जब हमारी रोटी बन जाती थी करीब 11 बजे के आसपास, तो मैं सीधा दादी के पास जाता था। तब दादी का छोटा कमरा था, बहुत बड़ा नहीं था, जैसे हम गेट से इंटर करते थे एक सिंगल सोफा होता था, दादी उस पर बैठती थी और उसके नीचे उनके पैरों के पास नीचे कारपेट था, वहां मैं बैठ जाता था। और इतना सारा वो क्या अंतर्देशी बोलते हैं ना, इनलाइन लेटर होता था, इनलाइन लेटर वो मेरे पास रहता था, पेन रहता था, इतनी सारी चिट्ठियां। और दादी एक एक चिट्ठी को खोलती थी, पढ़ती थी और वो मुझे बोलती थी और मैं वो लेटर लिखता था, फाइनली सबको मैं फोल्ड करके पेस्ट करके वो देता था। तो इतना दादी फास्ट बोलती थी ना कि उतना फास्ट लिखना संभव नहीं हो पाता था। फिर मैं रुक जाता, मैं बोल दादी थोड़ा धीरे बोलिए ना, इतना जल्दी बोल रहे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, छूट जा रहा है। या कई बार मैं रिपीट करता, दादी क्या बोला, तो दादी कहती थी तेरे उम्र में मैं थी तो कितना फास्ट लिखती थी, तेरे को लिखना भी इतना फास्ट नहीं आता है। मैंने बीच बीच में इतना प्यार से वो करना भी, और उसमें ऐसी ऐसी बातें एकदम प्राइवेसी वाली, एकदम प्राइवेट बातें उसमें लिखनी पड़ती थी, दादी डिक्टेट करती थी। क्योंकि बहनों की तो अलग अलग समस्या होती है, कई बार जोन्स की समस्या होती थी, कई बार सेंटर की समस्या होती थी, ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं की जा सकती या किसी और से शेयर नहीं की जा सकती। तो दादी एक चीज हमें जरूर सिखाती थी कि देखो ये यज्ञ तुम्हारा है, तुम यज्ञ के वफादार बच्चे हो, और यज्ञ की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना ये तुम्हारी जवाबदारी है। कभी भी जब गेट से बाहर तुम निकलो तो जो कुछ भी मैं लिखा रही हूं उसको कभी किसी से शेयर मत करना। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम किसी बहन को हम पर्टिकुलरली जानते भी हैं और उसके बारे में हम कुछ ऐसी चीजें सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति खराब हो जाता है। तो दादी कहती थी कि न तो दृष्टिकोण खराब हो और न ये बाबा की प्राइवेसी कभी किसी से शेयर करनी है। दादी तुम पर बहुत विश्वास करके ये कार्य तुम्हें दे रही है, ये कार्य सबको नहीं दिया जा सकता है। और सचमुच मैं जब उठता था, गेट से बाहर आता था, तो मैं अपनी साइकोलॉजी बना लिया था कि मैं सब भूल गया। कई बार कुछ लोग जो मुझे जानते थे, हालांकि जब तक ये सिलसिला चला तब तक बहुतों को नहीं पता था कि ये सेवा मैं करता हूं, ये मैंने बाद में कईयों को बताया। कुछ लोग जानते थे, वो पूछते थे, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। ऐसा लगता था कि वहां से उठे और वो भूल गया। और उस दौरान दादी का वो जो प्यार मिलता था ना, वो इतना दिल को छूता था। दादी कभी कभी लिखाते लिखाते, ये लो तो लिखाओ, फिर दादी लिखाते लिखाते अपना पैर मेरे गोद में रख देती थी, ये मेरा मोजा निकाल, गर्मी हो रही है, तो मैं दादी का मोजा निकालता था। कभी कभी ठंडी के दिन होते थे तो ये मेरे को मोजा डाल, मेरी पैर में ठंडी लग रही है तो मैं दादी को मोजा पहना। मैंने वो एक अजीब सा, एक ऐसे लगता है ना कि माँ और बच्ची का वो जो रिलेशन, वो प्यार जो आज कहीं ना कहीं मिस होता दिख रहा है, वो चीज ऐसे ही चंदमणि दादी जी से भी हम सबको बहुत प्यार मिला है।
थैंक यू संजय भाई जी। चंद्रमणि दादी की बात आती है तो हमेशा उनकी जो छवि है ना, वो आती है कि दादी 4 बजे राजऋषि हॉल में योग कराने आते थे, और मुली क्लास होता था तो हमेशा एक ऐसी होड़ लगती थी कि दादी के आगे फ्रंट में बैठें, क्योंकि दादी उनका मुली सुनाने का तरीका मेरे को भी वो धूमिल याद आता है, क्योंकि हम तो सेवा में आते थे उस समय। दादी के सामने जो बैठते थे, दादी इतनी इंटरेस्टिंगली सुनाते थे, नाम लेते थे और पूछते थे, बहुत लाइवली मुरली होती थी। शाम को योग कराने के लिए दादी हॉल में आती थी। तो राम भाई, हम चाहेंगे अगर चंद्रमणि दादी का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हो तो दादी का आप हमें सुनाएं।
ओम शांति। चंद्रमन दादी जी तो बहुत महान हस्ती है, बाबा ने उनको शुरू शुरू में ज्ञान सरोवर में निमित किया है। दादी जी को ज्ञान सरोवर का इंचार्ज थी, डायरेक्टर थी वो। दादी जी हमें रोज चक्कर लगाती थी किचन में और पूछती थी आपको क्या चाहिए, हर चीज के लिए सपोर्ट करती थी और हमें समझाती थी कि कैसे बनाना है, कैसे खिलाना है। कभी कभी हम सब्जी बना के ले जाते थे दादी जी को, दादी जी बहुत प्यार से खाती थी, लेकिन कभी ये नहीं बोलती थी ये खराब है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। दादी जी हमें बताती थी कि इसको और बेहतरीन बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसा खिलाओ। एक बार ठंडी का सीजन था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उस समय बहुत पतले पतले स्वेटर्स होते थे हमारे पास, बहुत ठंडी थी। तो एक बार मैं दादी से मिलने गए थे नाश्ते के बाद, तो दादी ने देखा आपके पास स्वेटर नहीं है क्या। नहीं दादी है लेकिन ऐसे एक दो है। तो दादी ने तुरंत स्टोर से निकलवाया एक बहुत सुंदर स्वेटर दे दिया मुझे कि बोला ये यूज करो, ठंडी से बचना है आपको, बहुत सेवाएं देना है बाबा घर में। ऐसे देखिए दादी कहाँ है महान आत्मा, और हमारे स्वेटर के ध्यान रखती थी, हमारे हर चीज का ध्यान रखती थी दादी जी। एक बार हेल्थ मेरा ठीक नहीं होता था तो दादी जी ने डॉक्टर को फोन करके बुलाया, आप सोचो कॉटेज में बुलाया था, फिर मुझे बुलाया। दादी जी ने कहा कि भाई ये डॉक्टर मेरे लिए भी देखने आया, आपको भी देखेगा आओ। मैंने इतना ध्यान रखते थे हमें, चंद्रमन दादी जी भी थी, हमारे पास बहुत कम समय में थी दादी जी, लेकिन हर बच्चे को बहुत प्यार बहुत स्नेह से और शक्ति भी देती थी, लव एंड ला दोनों थे उनके पास, बहुत प्यार भी करती थी उतना ला का बैलेंस भी रखवाती थी। वो इतने सारी बहनों को भेजती थी हमारे पास, ये बहन आएगी ये स्पेशल बनाना चाहती है इससे कुछ सीखो, वो बहनें आती थी हमें सिखाती थी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कि 20 लोगों का कैसे बनाना है, फिर हम 2000 लोगों का कैसे बनाना है, उस समय 1500 2000 की पार्टी होती थी, फिर कैसे बनाना है हम सीखते थे, फिर दादी को दिखाते थे, दादी फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके सिखाती थी। ऐसा हमारे लिए देखिए ज्ञान सरकार डायरेक्टर भी है, वो कितना बड़ा पोस्ट है, और प्लेस पंजाब जोन की इंचार्ज थी, इतना बिजी होती थी दादी जी, तभी भी दादी जी टाइम देके एक एक व्यक्ति को पर्सनल लेवल में पालना देती थी। वो अभी हम तो मिस करते हैं, दादी प्रकाशमणि जी है, चंद्रमन दादी जी है, ये तो भगवान का सीट पर बैठने वाले महारथी है, ये सब भगवान ने अपने सीट पर बिठाया, आप सोचो इनको। दादी प्रकाशमणि जी की मैं एक बहुत सुंदर विशेषता बताता हूँ, हमको उस समय नया नए थे, खाना बनाना नहीं आता था, हमारे एक भाई ने क्या किया तायरी बनाने के लिए बोला, स्वीट राइस आज खाया ना आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है 10 किलो चावल में 10 किलो चीनी डालना होता है, उस समय हमें 40 किलो तायरी बनाना था, उसने 4 किलो चीनी डाला, अभी हालत क्या होगा बताओ। हर सैंपल दादी के पास जाता था, दादी जी ने टेस्ट किया तो कुछ भी नहीं है, मीठा ही नहीं है उसमें, 40 किलो कहाँ 4 किलो कहाँ। फिर दादी जी वहां से आई थी, और एक बार करेला बनाए थे हम लोग, इतना कड़वा मुंह में भी नहीं रख सकते, तो दादी जी प्रकाशमणि दादी जी चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है उस समय, तो यहाँ आई थी ज्ञानपुर में आके बोला करेला किसने बनाया, हम लोगों ने कहा दादी हम लोगों ने बनाया, उस समय मैं निमित्त था किचन का। फिर थायरी किसने बनाया बोला, तो एक भाई ने बोला दादी जी मैंने बताया, एकदम फीका इसमें चीनी नहीं डाला, तो हमको पता ही नहीं है दादी जी कितना डालना है, तो हमने 4 किलो डाला, नहीं भैया 4 किलो नहीं 40 किलो डालना चाहिए, चलो मैं आपको सिखाती हूँ कल फिर बनाना थायरी। फिर दोबारा बनवाया हमसे, और दादी जी बैठ के हमें सिखाया कैसे चीनी बूनना होता है, उसमें क्या क्या डालना होता है, कैसे करना होता है। फिर करेले के लिए बोला कि आप लोग नमक और हल्दी के पानी में डुबा के रखना है, इसको मिला के रखना, नमक हल्दी मिला के रखा हम लोग ने। फिर दादी जी स्वयं पांडवों से आई थी, वो निचड़वाई सारा निकलवाई उसमें से हल्दी नमक से, फिर उसको बोला थोड़ा तेल ज्यादा तल के इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह भूनना, फिर भूना हम लोगों ने, फिर टेस्ट कराया हम सबको। ऐसी पालना हम दादियों से मिलती थी, एक एक मिनट दो मिनट के नहीं, एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा हम दादियों के साथ रहते थे। कभी हम दादी के पास जाते थे ना, चंद्रमन दादी के पास, दादी बुलाती थी आओ इधर आओ उधर आओ, दादी खाना खा रही है, दादी ऐसा रोटी का टुकड़ा तोड़ देती थी, सब्जी निकाल के हमारे मुंह में रखती थी, खा लो बैठो। माना इतना प्यार हमें मिला है, हमारे साथ महान हस्तियों का तो जीवन भर ऋणी है, धन्यवाद तो हम नहीं कर सकते, ऋणी है हम सब ब्राह्मण परिवार। ओम शांत।
जब दादी चंद्रमणि दादी की बात आई ना, आपने बताया कि थोड़े समय के लिए पालना मिली, तो जिन्होंने भी पालना लिया चंद्रमणि दादी का, बाबा वैसे तो बोलता है कि रोना नहीं होता है, लेकिन ये हर एक का अनुभव था। जब दादी ने अव्यक्त हुए शरीर छोड़ा तो हर एक ज्ञान सरोवर निवासी उनकी आंखें नम थी, और ये चीजें भले बाबा ने बोला ड्रामा था, पर लोग अंदर से जैसे होता है ना आंसू हर एक के आए थे। तो ये क्यों था? क्योंकि ये उनकी पालना थी। हाँ, पालना के कारण।
एक्चुअली चंद्रमणि दादी की बात जब की तो बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, पूरा फ्लैशबैक हो रहा है। जैसा कि शैलेंद्र भाई बता रहे हैं, हमने अपनी आंखों के सामने पहली बार किसी बड़ी दादी को खोया था, कोई बड़ी सीनियर दादी, और उसमें भी चंद्रमणि दादी जिनका हमारे ऊपर बहुत उपकार रहा है, बहुत पालना रही है, बहुत इंटेंस प्यार रहा है, और जैसा कि शैलेंद्र भाई बता रहे थे कि उस समय सबकी आंखें नम थी, सबसे ज्यादा प्रभाव ज्ञान सरोवर निवासियों पर पड़ा था। लिटरली 3 दिन तक यहाँ के किचन में खाना बनता था और फेंका जाता था, बनता था और फेंका जाता था। निवासी लोग खाना टच तक नहीं कर पाते थे, माना खाना खाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। इतना गम का माहौल था, इतना प्यार मिला था, और ये रिपोर्ट कंटिन्यूस बड़ी दादी तक जा रही थी कि दादी ये ज्ञान सरोवर वाले बहुत छोटे हैं, बहुत प्यार था और उनको बहुत तकलीफ है, बहुत मायूस है। तो जब दादी की बॉडी को यहाँ लाई जा रही थी तो बड़ी दादी ने फोन करके बोला कि सबसे पहले ज्ञान सरोवर ही लेके जाओ। हालांकि यज्ञ में ये सिस्टम तब नहीं था, पहले हर कोई भी शरीर छोड़ता था तो पहले पांडव भवन में उसका शरीर आता था, फिर कहीं और जाता था। दादी ने बोला नहीं, इनको लेकर के सबसे पहले ज्ञान सरोवर जाओ और उतनी देर वहां पर रखना जब तक उनका मन न भर जाए, जब तक ज्ञान सरोवर निवासी अपनी मर्जी से नहीं कहें कि दादी के शरीर को ले जाओ, तब तक आप लोग उसे उठा करके पांडव भवन नहीं लाना। तो समझ सकते हैं कि कितना प्यार मिला होगा। हम सब कहते हैं कि हम सब परिवार हैं, लेकिन ये फीलिंग दादियों के समय में हमको बहुत आती थी। और एक परिवार को कैसे चलाया जाता है, लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे होता है, वो तो दादियों से सीखने को मिलता है। छोटा सा 2 मिनट का अनुभव मैं बताना चाहूंगा। चंद्रमणि दादी जी जब थी तो एक बार एक भाई, हमारे साथ के भाई, हमारी कंप्लेन लेकर के दादी के पास गए कि दादी इन्होंने मेरे को परेशान किया है, इन्होंने मेरे को धक्का दिया और मेरे को बहुत परेशान करते हैं। दादी ने बोला अच्छा जाओ बुला के लाओ, मुझे जानती तो थी बहुत अच्छी तरह से, तो जाओ बुला करके ले आओ। वो भाई हमको किचन से बुला करके चलिए दादी ने आपको बुलाया है, और रास्ते भर मुझे बोलते आए, कुछ न कुछ बोलते आए, जैसे होता ना कि आदमी गुस्से में तो समझ में आता है दूसरों को, तो बोलते आए। खैर हम गए, जाने के बाद दादी को, दादी के सामने उन्होंने वो सारी बातें रखी। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बैकग्राउंड कुछ मालूम ही नहीं है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, पता नहीं क्या कारण था। वो भाई मुझे तब बाद में भी समझ में नहीं आया इतना क्यों ऐसा इन्होंने रिपोर्ट किया। तो खैर दादी तो उस चीज को समझ गई, और जिस तरह से उग्र होकर के वो दादी से बात कर रहे थे, दादी ने उनको चुप करा दिया। दादी उल्टा ही उन पर थोड़ा नाराज हो गई और उन्होंने बोला नहीं तुम गलत हो, ये गलत नहीं है। खैर ये पार्ट तो बैकग्राउंड था। जो चीज हम लोगों को सीखने को मिली वहां, मुझे बहुत जो सीखने को मिली कि परिवार में समस्या को सुलझाया कैसे जाता है, एक बड़ा व्यक्ति सचमुच बड़ा होता कैसे है। दादी ने सारी बातें सुनी, दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों को फिर समझा बुझा करके दोनों को टोली दी। टोली देने के बाद हम दोनों खाने को हुए तो दादी ने रोक दिया, बोला ये टोली तुम्हारे लिए नहीं दी है, तुम दोनों एक दूसरे को खिलाओ। तो हम दोनों ने एक दूसरे को मुंह में टोली खिलाया, फिर बोला हाथ मिलाओ, हाथ मिलाया, अच्छा गले मिलो, तो गले मिल करके तुरंत छोड़ दिया। दादी ने बोला तुमको बोला क्या छोड़ने के लिए, तुम गले पकड़ के एक दूसरे से चिपके रहो, जब दादी बोलेगी तब छोड़ना। तो हम लोग एक दूसरे को गले पकड़ के चिपके रहे, मतलब उस समझिए कि वो प्यार जो उस समय मिला और एक समस्या को सॉल्व करने का एक विचित्र अनोखा तरीका, हमारा गुस्सा जो है ना वही ठंडा हो गया। मेरे मन में भी ये गुस्सा आ रहा था कि मैंने जो कुछ किया ही नहीं, जिसके बारे में लिटरली मुझे पता भी नहीं, उसकी कंप्लेन की जा रही है। फिर दादी ने बोला दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालो और किचन तक ऐसे ही जाना। हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके किचन तक जा रहे हैं और रास्ते में लोग हंस रहे हैं, जो भी देख रहा है वो हंस रहा है कि अभी तो ये लड़ते हुए गए थे और अभी दोनों हाथ में हाथ डाल करके जा रहे हैं किचन तक। जाते जाते दोनों का गुस्सा ठंडा। कहने का मतलब ये है कि दादियों का पालना करने का तरीका बहुत विचित्र था।
ये सबको मालूम है कि जैसे संजय भाई जी ने बताया तरीका अलग होता था, तो दादियों का तो देखा है, मतलब अगर कोई कंप्लेन भी करता है ना, किसी का कुछ गलती भी होती है तो दादी पहले उनकी महिमा करते हैं, जैसे बाबा हमें सिखाते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा की मुरली में कई बार आते हैं, पहले समान में लेके आते हैं। तो ये प्रैक्टिकली दादियों का भी ऐसे ही था, वो पहले हमारी विशेषताओं को, चंद्रमणि दादी का डायलॉग था कि आप तो ज्ञान सरोवर के राजहंस हो, यू नो, उनकी क्लासेस में ये बहुत बार आता था, आप तो ज्ञान सरोवर के राजहंस हो। तो ऐसे जब दादियां इतने समान में बोलती हैं तो मन तो ऐसे ही पिघल जाता है। हाँ, तो अभी संजय भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दादियों को तो ये प्रैक्टिकल पालना मिलती है, आप लोगों ने बाबा अव्यक्त बाप दादा से बहुत बार मिलन मनाया है, और प्राय ये समझ में आता है कि ज्ञान जो है वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो जब आप अव्यक्त बाप दादा से मिले तो आपको कैसे निश्चय हुआ कि ये भगवान है, और जो मिलन की अनुभूति, जो बाबा बोलते हैं ना मिलन का सुख, उसको आप प्लीज हमें थोड़ा बताएं।
जहां तक निश्चय की बात है, वो तो बाबा से मिलने से पहले ही मुझे हो गया था। मैं जैसे ही ज्ञान में आया और जब माता पिता के साथ सेंटर पर जाने लगे तो मेरे दिमाग में ये चीज तो पूरी तरह बैठ गया कि शिव बाबा ही भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं है, कोई और भगवान नहीं है, क्योंकि घर में सारा दिन ज्ञान के सिवा कुछ दूसरी चर्चा होती ही नहीं थी। कोई रिलेटिव आए, मित्र संबंधी आए, तो माता पिताजी बस सारा दिन वही ज्ञान की चर्चा सुन सुन के वो पूरे 7 दिन वाले पाठ पक्के हो गए थे। मैंने आज दिन तक भी 7 दिन का कोर्स किया नहीं है, मैं दूसरों को कराता हूं, मैंने कभी नहीं किया। वो घर के लोगों से सुन सुन करके वो चीज अंदर भर गया था। तो जहां तक निश्चय की बात है, जब हमने मधुबन को देखा नहीं था तभी मन में एक अटूट विश्वास हो गया था, मैं भी ये मेरा संस्कार हो, क्योंकि वो जो उम्र थी वो भगवान ज्ञान ध्यान निश्चय वाली उम्र थी नहीं। तो मेरा एक जो पाठ था या मेरा जो कुछ भी कह सकते हैं, वो निश्चय तो मेरा पहले हो ही गया। फिर जब मैं मधुबन आया, पहली बार बाबा से मिला, दूसरी बार मिला, मुझे कोई बहुत विशेष अनुभूति नहीं हुई। ठीक है, बाबा बैठे हैं, शिव बाबा हैं, विस्परिंग साउंड में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, एक एक बातें हम नोट भी करते थे, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जो बहुत एक डिवाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब इसके पीछे कारण ये है कि कई बार किसी ऊंची हस्ती को अनुभव करना हो तो उसके लिए हमारी अवस्था भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर हमारी अवस्था में उतनी परिपक्वता नहीं है तो कई बार हम भगवान को भी फील नहीं कर पाते हैं। पर एक अच्छी बात मेरे में ये थी कि ज्ञान और योग के प्रति रुचि पहले दिन से ही मेरे मन में थी, परंतु योग को लेकर के मेरे मन में संशय भी बहुत रहता था। मेरा योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, मेरी विधि सही है कि नहीं है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग चैप्टर है, उसका भी एक अच्छा अनुभव है। लेकिन आने के बाद 2-3 साल के अंदर ही मेरी ये जो खोज थी वो समाप्त हो गई और मेरा योग बहुत अच्छा लगने लग गया। और जैसे जैसे मेरी अवस्था बढ़ती गई वैसे वैसे बाबा के मिलन का सुख मिलता गया, वो अनुभूति होती गई, और फिर ऐसा लगता था कि बस बाबा ही सब कुछ है, ईश्वरी मिलन ही सच्चा आनंद है, इससे अच्छा जीवन और इससे अच्छा सुख दूसरा हो नहीं सकता। कई बार तो बाबा सामने बैठे हैं, मुरली चला रहे हैं, और एक ऐसी ट्रांस जैसी स्थिति, हालांकि मुझे आज तक कभी कोई साक्षात्कार हुआ नहीं, मैं कभी ट्रांस में गया नहीं, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि योग की अवस्था में ही ये सब कुछ अनुभव होते हैं। तो बाबा सामने बैठे हैं, मुरली चला रहे हैं, कई बार मिल रहे हैं एक एक से पर्सनली। जब मैं आया तो बाबा ग्रुप से मिलना शुरू कर दिया था, पर्सनली तो नहीं मिलते थे, ग्रुप से मिलना शुरू कर दिया, किसी को टोली खिला रहे, किसी से बात कर रहे। वो जो सामने दृश्य दिखता था वो इतना अभिभूत करता था कि कई बार सेमी ट्रांस वाली स्थिति हो जाती थी। और जब उस योग की गहरी अवस्था में आत्मा पहुंचती है तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग बेकार में बेकारों के सुख के पीछे भागते हैं, बेकार में ये सारा संसार धन और साधनों के पीछे भाग रहा है। जो सुख इस अवस्था में है वो सुख दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं है। फिर हमने कोशिश किया कि अपनी मेहनत से, वो तो बाबा की मदद थी, अपनी मेहनत से बीच बीच में ये अनुभव होता रहे। तो जैसे जैसे हमने देखा कि मेरी अपनी अवस्था अच्छी होती गई, बाबा के मिलन का सुख, वो वास्तव में हस्ती क्या चीज है, उसकी वो हस्ती धीरे धीरे समझ में आने लगी।
बहुत सुंदर रामू भाई जी, आपका अजत बाप दादा के साथ कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट, ऐसा मिलन जो आज भी आपको आपकी स्थिति बनती हो, ऐसा अनुभव?
मेरा बहुत सुंदर अनुभव रहा। मैं बोली दादी किचन में सेवा करता था ना, दादी जी की एक ड्यूटी थी, बहुत सारे आइटम आते थे बाप दादा के दिन, बाप दादा के सामने रखने के लिए प्लेट में रखते ना, छोटे छोटे कट में, बहुत सॉफ्ट होते थे, भोग लगाते थे ना, भोग प्लेट में सजाना था, तो मुझे वहां रहना पड़ता था। तो क्या होता था, बाप दादा आते थे 6:30 बजे, हमारी सेवा पूरा होती थी 6 बजे, कभी 6:30 बजे, फिर हमको रूम में जाके नहाने धोने में फिर टाइम लगता है, 7 बजे जाते थे हाल में, तब तक बाबा दृष्टि देता था, आ चुके होते थे। लेकिन वंडरफुल बात है, हम सेवा करके जाते थे तो कहीं ना कहीं नजदीक में हमको जगह मिलती थी। मुझे वंडर लगता था, कोई ना कोई बुलाता था, इधर छोटी छोटी इधर जगह, इधर जगह, हर टर्न में ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ, शिव जयंती का पहले का टर्न था, ये बहुत सुंदर अनुभव है आप सबको दादियों का। तो शिव जयंती का पहला टर्न था, उसके पहले का टर्न था, तो 6 बज गया, पूरा नहीं हुआ सेवा, 6:15 बज गया। फिर मैं दादी जी को कहा, दादी जी 6:15 बज गया, अभी तक बाप दादा आने वाला है, और मैं नहाऊंगा कब, धोऊंगा कब, वहां जाऊंगा कब। तो दादी ने बोला और 5 मिनट रुको। फिर 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 6:25 हो गया, तभी भी सेवा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आइटम आने वाले होते ना, धीरे धीरे आता था, तो आए नहीं। तो फिर मैं थोड़ा सा दादी जी के ऊपर नाराजगी व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त, सवेरे से सेवा कर रहे हैं, अभी तक भेजा नहीं आपने, मुझे जाना है किसी हालत में। दादी जी ने बोला ठीक है जाओ। फिर मैं फटाफट दौड़ा, नार धोया, बाबा के सामने बैठा, बैठ के चले गया था। फिर दूसरा दिन दादी ने सेवा करने के लिए गया था ना, बोला किचन में, तो दादी ने बुलाई, बिठाई, कैसा रहा अनुभव बोला। मैं बोला दादी अच्छा नहीं लगा। क्यों क्यों बोलते, तो मैं दादी सेवा छोड़ के गया था ना, सेवा थोड़ा जल्दी चला चाहिए था, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, आप इतना बुजुर्ग हो, आप अकेले कैसे कर सकते हो, ये भले मददगार कोई भी हो, मेरे को थोड़ा सा अनुभव है ना, कैसे बोला था। तो दादी ने एक सुंदर अनुभव सुनाया था, वो अनुभव इतना वंडरफुल है, उस समय 300 दादियां होती थी ब्रह्मा बाबा के समय। तो दादी को और सत्ती बोली दादी, इनकी बहन को ड्यूटी थी, सब तीनों बहनों को, 300 बहनों को खाना बनाने की। तो उस समय बाबा दिन में भी आता था कई बार, हफ्ते में 1-2 बार, तो दादी जा नहीं पाती थी। एक बार बाबा मुरली सुनाते सुनाते अचानक उठ गया मुरली से, ओम शांति ने कहा, कुछ नहीं कहा, उठ के डायरेक्ट बोले दादी किचन में आ गया। तो दादी देखती रह गई, अरे गुलजार बाबा चले गए क्या। तो बाबा जैसे दृष्टि दिया ना उनको, उनको महसूस हुआ ये बाप दादा है। तो बाप दादा ने बहुत प्यार से उनको गले लगाया और बच्चे मैं जब मुरली सुना रहा था, सुना नहीं पा रहा था, क्यों, आप बहुत याद आ रही थी, बाबा सहन नहीं कर पाया इसलिए उठ के आया। बच्चे रहम का सागर पर रहम करो, बाप दादा से कभी कभी मिलने आओ, कितनी बड़ी बात है। रहम का सागर कहता है मुझे, मुझ पर रहम करो दादी को। वो अनुभव सुन के मुझे इतना गदगद हुआ। दादियां कभी क्लास नहीं कराती थी, नाराज नहीं होती थी, ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती थी, तो इससे क्या होता, हमारे अंदर प्रेरणा आती थी, है ना। फिर शिव जयंती का टर्न था नेक्स्ट, और सेवा ज्यादा होती है उस समय। 6:30 हुआ था, बाप दादा आ भी गए थे, तो उसके बाद में दादी ने बोला आप जाओ नहाने। दादी ने देख लिया, इसको समझाया ना मैंने, इसको अनुभव हो गया, तो फिर फटाफट गया, नहा धो लिया, चला गया था। उस समय ओम शांति भवन में बड़े बड़े किटकियां होती ना, विंडोज बहुत बड़े बड़े थे, एक खिड़की पर एक भाई बैठा हुआ था, उसने बोला इधर रामू इस साइड में है और एक जगह खाली है। फिर मैं भी खिड़की के ऊपर बैठ गया, मुरली सुना था, सुनने के बाद अनाउंसमेंट हुआ, रशियन ग्रुप थी उस समय, बहुत सारे फॉरनर्स थे शिव जयंती के समय, ओनली डबल फॉरनर्स को ही ऊपर स्टेज पर आना है और बाप दादा से दृष्टि लेना है। तो सब लोग दृष्टि लेते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत दिल होती थी कि बाप दादा से मैं भी दृष्टि लूं, तो कैसे लूं, आगे जाएगा तो बहुत पावरफुल सिक्योरिटी, आने भी नहीं देते वो लोग, धक्का मार देते। मैं जैसे गया आगे, ए छोटे पीछे हट, तुम कैसा आ गया इधर, पीछे हट बोला, तो मैं पीछे खड़े हो गया। फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश किया, फिर धक्का मार दिया दोबारा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। फिर मैं दिल से बाबा को कहा कि बाबा आप मुझे अपना बच्चा समझते हो और मैं दिल से आपको सेवा किया हूं ना, मैं ऊपर स्टेज पर नहीं आऊंगा, आपको बुलाना है। अब वंडरफुल बात है, जैसे एक सेकंड भी नहीं हुआ, मैं संकल्प करके बाबा ने ऐसा दृष्ट ऐसा घुमाया सिर को, ऐसा बुलाया। तो सामने वाला उस समय किरीट भाई गोविंद भाई थे, वो लोगों ने सोचा उनको, मैंने बोला नहीं आपको नहीं, मुझे बुला रहे बाबा। और एकदम स्टन हो गया, सब लोग वंडर खाए थे। तो फिर मुझे साइड में किया था उन्होंने, फिर बाबा ने कहा ऐसा। फिर स्टेज पर गया था, बाबा ने दो बिस्किट दिया था, अभी तक याद है, वो गोल गोल होता था, गोल में राउंड होता था, बीच में होल होता था, तो दो बिस्किट दिया। नीचे फॉरनर्स बहुत थे, बैठे थे स्टेज के नीचे साइड, भैया टोली, भैया ब्रदर टोली बोला। मैं टुकड़ा करके उनको दे दिया। फिर मेरे पास टोली नहीं थी, फिर बाबा ने दोबारा बुलाया, फिर दोबारा दो पीस दिया, फिर बोला किसको देना नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा। और बाप दादा ने एक शब्द बोला था मुझे, सबको बोलता था उस समय एक आध, तो बुझा बच्चे बाबा को उलाहना देते हो, ध्यान रखना बाबा के कार्य में आप लग जाओ तो भगवान आपके कार्य में लगेगा। आप भगवान का कार्य करो, भगवान आपका काम करेगा। फिर भगवान आपका काम करेगा ना, सहज हो जाएगा हर कार्य। वो अनुभव आज तक भी मैं मधुबन में रहते हुए अनुभव करता हूं। मधुबन का एडमिनिस्ट्रेशन इस संसार के सबसे टफेस्ट, बहुत हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। आपके घर में रोज फंक्शन होता हो, आप कितना बिजी रहते होंगे, कितनी सारी व्यवस्था करना पड़ता हो। हमारे घर में रोज फंक्शन है, बड़ा फंक्शन, छोटा फंक्शन नहीं, और उसमें से एक भी रिपोर्ट नहीं आना चाहिए, एक भी लड़ाई नहीं होना चाहिए, एक भी बड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती रहती है, जैसे बचपन में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम मोहल्ले में रहते ना, तो क्या करते, माता पिता आके दोनों को अलग कर देते, जाओ जाओ। फिर हमारे पिताजी बोलता था उससे बात ही नहीं करना, उनके पिताजी बोलता था इनसे बात नहीं करना। फिर क्या होता था, आधा घंटे के बाद दोनों मिलते थे, फिर रोड पर खेलते थे। सेम मधुबन में ये सिस्टम होता है, आपस में बातें होती है लेकिन आधा घंटे के अंदर मिल जाते, फिर खाना पीना रहना सहन सब मजे से करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं सब। ये बाप दादा का पालना है, बाबा ही चलाते हैं, हम चला नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन को, सिर्फ हम निमित्त है। ये दुनिया के सबसे हार्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैं बचपन से सेंटरों में रहा हूं, बहुत सारी बहनों को देखा हूं। सेंटरों की तो नदियां हैं, ये तो सागर है, ओके ना। अच्छा, ओम शांति।
बहुत एक्चुअली ये तो जो भी बाबा से मिले उनका अनुभव होता है। बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो हम उस अवस्था में आ जाते हैं, बाबा जिस फ्लो में चला रहे होते हैं। ऐसे ही एक बार हमें मधुबन निवासियों को ओम शांति भवन में मिलने का मौका मिला था, तो मन में कई बार क्वेश्चन होते हैं ना कि बाबा के सामने अगर होगा ना तो पूछेंगे, संकल्प करेंगे। पर जब आप बाबा से दृष्टि लेने जाते हो ना, तो ये सारी बातें है ना एकदम वाइप आउट हो जाती है, मन एकदम जैसे है ना निर्मल हो जाता है। आपको मन करता है बस दृष्टि लेते रहो, और बाबा की आंखें भी इतनी गहरी होती है ना, सच में आप जो संकल्प करते हो वो सिद्ध हो जाता है दृष्टि से। तो ये तो बाबा का ही भंडार है, जैसे रामू भाई ने बोला, हमारा जीवन हो, यहाँ का सिस्टम हो, सब करण करावन हार कौन है, बाबा है ना। तो ये वंडरफुल है। देखो अभी टाइम हो रहा है, पर मैं संजू भाई एक जरूर क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप योग कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और योग में स्थिति कैसे बनाते हैं।
एक्चुअली जब मैं शुरू में यहाँ आया, तो मैंने जैसे बीच में अभी थोड़ा सा टच किया था कि योग को लेकर के मेरे मन में कंफ्यूजन बहुत रहता था, लेकिन मैं योग भी बहुत करता था, बैठता बहुत ज्यादा था, भले सेवाएं बहुत थी फिर भी मैं बैठने का बहुत समय व्यतीत करता था, पर मन में कन्फ्यूजन रहता था। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैं योग मेरा क्लियर लग पा रहा। उस बीच हम बहुत सारे भाई बहनों से, बड़े दीदी दादियों से या सीनियर भाई बहनों से मिले होंगे, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता था, मेरा योग नहीं लगता है, क्या करूं ऐसा जो मेरा योग गहरा हो जाए। किसी से भी बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, पर एक दिन मैं सूरज भाई जी के पास गया और मैंने सेम प्रश्न उनसे ये पूछा कि भाई जी योग में मेरी रुचि तो है लेकिन मेरा योग लगता नहीं है, मुझे कोई ऐसी विधि आप बताएं जिससे मेरा योग लगने लगे। तो उन्होंने पूछा, आप कैसे योग करते हो? मैं जैसे भी करता था मैंने बता दिया। उन्होंने कहा, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, आज से सिर्फ एक ही अभ्यास करना, मैं यहां पर आत्मा विराजमान हूं, भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा चमक रही हूं, आत्मा को सिर्फ देखना है और मन में हल्के हल्के विचार करना है कि मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। तेज संकल्प भी नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के संकल्प एक लंबे लंबे अंतराल पे, और इसको दिन में 25 बार एक एक मिनट के लिए देखना है। अभी बाबा को भूल जाओ, योग की सारी विधियां भूल जाओ, सारे प्रैक्टिसेस भूल जाओ, एक ही प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूं, दिन में 25 बार एक एक मिनट के लिए। मुझे रुचि बहुत थी, मैं हर 10 मिनट में एक बार करता था, दिन में 100-100 बार मैं करता था। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि एक हफ्ते के अंदर ही मेरा मन एकाग्र होने लगा है, मेरे को योग का सुख मिलने लगा है, योग मेरा लगने लगा है। योग को लेकर के मेरे मन में एक जो द्वंद था, कंफ्यूजन थी, वो समाप्त हो रही है। और इस अभ्यास को सूरज भाई ने कहा था कि आप 6 महीना करना, आपका योग लगने लगेगा। 6 महीना तो छोड़िए, आज करीब 30 साल हो गए, आज दिन तक वो मैं अभ्यास करता हूं। वो अभ्यास मेरे लिए इतना नेचुरल है कि उसके लिए अब मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। शुरू में मन भागता था, फिर खींचना पड़ता था, मन भागता था, फिर खींचना पड़ता था। ये प्रोसेस है, सबके साथ होता है, लेकिन एक अभ्यास के तहत एक लंबी साधना हम कर लेते हैं तो वो बहुत नेचुरल हो जाता है ये अभ्यास। और इसके साथ मैंने मुरलियों से जो सार निकाला या बड़ों के क्लासेस से जो सार निकाला, मैंने इसके साथ एक अभ्यास और जोड़ा, मैं शिव बाबा के किरणों के नीचे हूं, चलते फिरते भी और बैठ करके भी। मैंने शुरू में अपनी दिनचर्या को 2 भागों में बांटा था, 4 घंटे मुझे बैठ करके योग करना है, मिनिमम 4 घंटे मुझे बैठना है और 4 घंटे चलते फिरते योग करना है। इस तरह से हमने अपना एक प्लान शुरू के दिनों में बनाया था, कई वर्षों तक। तो 2 अभ्यास, एक मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमक रही हूं, दूसरा 4-5 फीट की ऊंचाई पर शिव बाबा है और उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मेरे अंग अंग में समा रही हैं और मेरे सारे विकार, सारी अपवित्रता निकलती जा रही है। तो शुरू से मैंने ये अभ्यास किया और मैंने देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर तो मेरा योग बहुत अच्छा लगने लग गया है और उस पर मैंने आज दिन तक भी कंटिन्यू करके रखा है।
थैंक यू वेरी मच। हम अपने दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने सुंदर अपने अनुभव, आपकी जो जीवन की शिक्षाएं थी हमारे साथ शेयर की। तो हम रामू भाई जी का, संजय भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।